ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग भागवत महापुराण से तृतीय स्कंध अध्याय 31। जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश और श्लोक संख्या 12। जन्तु उवाच तस्योपसन्नवितुं जगदिच्छयातात् नानातनो भुवि चलचरणारविन्दम् सोहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे। एने दृशी गतिरदशततोऽनुरूपा। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तात्पर्य, चल चरणारविंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति घूमते फिरते थे। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस विश्व इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असुरों को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक से भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवान इच्छया अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि होती है। संभवामि आत्माया, मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं। वे प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहां पर इच्छया कहा गया है। वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से आते हैं। अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप है। जिस तरह परमेश्वर जीव को परवाह भयावह स्थिति में डालता है, उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। कृष्ण चाहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वह इस संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं लौटता। तो यह श्लोक बड़ा ही सैद्धांतिक श्लोक है। यहां पर जीव अपने वास्तविक परिस्थिति में आकर के जो भी बात कहा है इस श्लोक में बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य बात है। शुद्ध अवस्था में यही परिस्थिति होती है। जब तक से व्यक्ति कंटामिनेटेड रहता है तो कुछ भी बकवास करता रहता है। जब होश में आता है तो अच्छा चीज कहता है। अंग्रेजी में 4R फॉर्मूला कहा गया है, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन एंड रीयूनिफिकेशन। पहले हम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां आ गए हैं, हम यहां पर क्यों आए हैं। अमी के किने अमार जाए ताप त्रय, यहां नहीं जानी के मने ही तो है। ये पहला स्टेज है रियलाइजेशन का कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे संसार में दुख क्यों मिल रहा है। मैं दुख नहीं चाहता हूं, मैं सब जगह सुख ही सुख ढूंढ रहा हूं, आनंद ढूंढ रहा हूं, दुख क्यों मिल रहा है और कैसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये रियलाइजेशन है। द रिपेंटेशन, रिपेंट करो, मैं क्यों इस परिस्थिति में आ गया हूं, कारण क्या है, हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कहा करता हूं कि पहले जमाने में गाय चराने वाले लोग गाय के गले में घंटी बांधते थे ताकि पता चले कि ये गाय कहां चर रही है, और आजकल के इलेक्ट्रॉनिक युग में ये घंटी बांध गया है कि ये गाय कहां चर रही है। इस घंटी को आप लोग थोड़ा बंद कर दो अभी कुछ समय के लिए। हां जी, क्या बात हो रही थी पुरुषोत्तम जी, घंटी की बात नहीं, आगे का रिपेंटेशन, रिपेंट करना। हरि हरि विफले जन्मो गुवाइनु, मानव जन्म पाइया राधा कृष्णा भोजिया, जानिया सुनिया भी सखाइनु। ये है रिपेंटेशन, रिपेंट करना, हाय हाय मैं क्यों व्यर्थ में जीवन गंवा रहा हूं। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, कितना सुंदर सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला हुआ है हरि भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। आप लोग जय विजय वहां क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ ना। मैं व्यर्थ में क्यों जन्म गंवा रहा हूं, भजन क्यों नहीं कर रहा हूं, रिपेंटेशन। और उसके बाद रेक्टिफिकेशन, और वह संभव होता है सताम प्रसंगा महावीर्य संविदो भवन तीर्थ कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा मृतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। साधुओं की संगति से वह शुरू होता है और तब रीयूनिफिकेशन यानी भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। अभी लघु के स्वभाव सही कहा, यही में खराबी है, ठीक मारा, लेकिन जूता से मारना चाहिए, भक्ति सिद्धांत जी बताए हैं, हाथ से नहीं। ये लघु केशव हमारा बंदर है, जब मैं यहां का प्रेसिडेंट था तो ये बंदरों को पकड़ता था जाकर के। हाँ जी, तो रेक्टिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन होता है साधुओं की संगति से। साधु ही हैं जो भगवान से हमारा नाता जोड़ सकते हैं। अभी हम लोगों का परिस्थिति हो गया है 36 का, 36 समझते हैं ना, उल्टा होना चाहिए 63 है, दोनों में 6 और 3 है लेकिन एक उल्टा हो गया है और होना चाहिए सामने सामने, और वह संभव है साधुओं की संगति से। ज्ञान दो प्रकार से उत्पन्न होता है, या तो स्वतः, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्ममान, या तो स्वयं ज्ञान प्रकट होता है जैसे जीव को यहां प्रकट हुआ है, या परतो वेह साधुओं की संगति से, दो ही तरीका है। तो यहां पर इस श्लोक में पार्टिकुलरली 3-4 बातें हैं। एक बात, यह जीव जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, कोई कह सकता है कि 7 महीने का जीव है ज्ञान, वहां कैसे उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया, वहां कैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि ज्ञान के जो स्रोत हैं वो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इनसे ज्ञान अर्जित करते हैं हम लोग। उस समय तो ये इंद्रियां काम नहीं कर रहे थे, जन्म लेने के बाद भी ये इंद्रियां नहीं काम करती। कुछ समय के बाद यदि प्रथम इंद्रिया कोई काम करना शुरू करता है तो वह है कान। और जानते हैं मरने के बाद सब इंद्रियां काम करना बंद कर देता है, लेकिन एक इंद्रिया काम करता है और वह है कान। इसीलिए कहा गया है श्रवणम, प्रथम भक्ति क्या है? सुनना। भगवान बड़ा अच्छा प्राकृतिक रूप से व्यवस्था भी किए हैं, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, और नहीं तो आप लोग देख लेना। जिनका अभी तक बाल नहीं पका है तो हाथ उठाओ, कितने लोग जिनका बाल नहीं पका है? तुम्हारा तो खत्म हो गया है। जब बाल पकने लगता है तो आप लोग ध्यान से देखना, बाल पकना शुरू होता है यहां से, कनपट्टी से, रमाकांत ढकने से क्या फायदा, पका होगा तो पका होगा, पकता है यहां से। यह प्रमाणित करता है कि अब सुनने का समय आ गया है। बचपन में नहीं सुना तो अब तो सुनना शुरू करो। तो श्रवण बहुत जरूरी है, ये प्रथम भक्ति है। तो परतो भी अब जीव को वहां पर एक ज्ञान इंद्रिया कार्य नहीं कर रही है, लेकिन जीव ज्ञानमय है, भले ही वह ढका हुआ है इन वस्तुओं से, यानी बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीन सूक्ष्म तत्व के साथ में लिपटा हुआ है, इसमें कर्म फल से वह बंधा हुआ है, तो वहां भी ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान को जैसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं, अपने आप स्वतः ज्ञान हो जाता है कभी कभी, तो जीव को ज्ञान होता है। और वहां पर जीव कह रहा है, इस श्लोक में बताया गया है कि जीव प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे भगवान, आप इस संसार में आते हैं। आते हैं कैसे? आते हैं इच्छया, अपने इच्छा से आते हैं। हम लोग यहां पर अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। यदि हम लोग अपनी इच्छा से आए होते तो हम में से सब लोग चाहते कि किसे घर में जन्म ले, हैं? किसे घर में जन्म ले? सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलो, अंबानी घर में यहां पैसा ज्यादा हो ही ना, दुख ना हो। सब लोग समझते हैं कि पैसा से सब, लेकिन अंबानी से अगर पूछे कितना सुखी है बेचारे। तो हम लोगों को इच्छा से, कुछ वक्त लोग कहेंगे कि नहीं, हमारी इच्छा थी कि वृंदावन में जन्म हो, अच्छा भक्त परिवार में जन्म हो, यही असली इच्छा है। एनीवे, लेकिन हम लोगों की इच्छा के अनुसार हम लोगों का जन्म नहीं होता है। हम लोग ये दें इच्छा से नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि कर्म साथ, कर्म के चलते, जो कर्म किए हैं, जैसा कर्म किए रहेंगे वैसा हमको ये जन्म मिलेगा। जहां कि भगवान जो हैं वो कर्म फल से परे हैं, उन पर कर्म फल नहीं लगता है, भगवान पर कोई कर्म फल नहीं लगता है, इसलिए वे स्वेच्छा से कोई देह ग्रहण कर सकते हैं और अनुरूप देह ग्रहण करते हैं। जो काम होगा उसी के अनुरूप, कार्य के अनुरूप। जैसे भगवान वामन देव, उनकी माता अदिति प्रार्थना की थी और भगवान आए भी, उन्हें दुख था कि उनके पुत्रों का सब धन असुरों ने हड़प लिया था। तो उनकी बड़ी कामना थी कि सभी असुरों को मार डालें, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएं, वो लोग रोएं और ये सब धन प्राप्त कर करके मैं अपने पुत्रों को दे दूं। उनकी यह इच्छा थी, लेकिन भगवान जानते थे कि आज के दिन असुरों से लड़ाई करना संभव नहीं है, उन लोगों को प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उन पर गुरु का कृपा है। तो भगवान वामन का रूप धारण किए, क्योंकि लोहा लोहा को काटता है। तो ब्राह्मण की कृपा से बलि महाराज को ये बल प्राप्त था, सब कुछ प्राप्त था, तो इसलिए भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए। तो भगवान आते हैं, रूप धारण करते हैं अपने इच्छा से, अपने इच्छा से जीवों पर करुणा करने के लिए। भगवान की अहेतु की कृपा है, भगवान का सब कुछ अहेतु की कृपा है पति जीवों के उद्धार के लिए। ये देह ग्रहण करना भी अलग अलग प्रकार का देह ग्रहण करना भगवान है, अलग अलग देह रूप में आते, अलग रूप में आते हैं, ये रूप ग्रहण करना है भगवान का कृपा है। चाहे वो शुकर का रूप हो, चाहे नरसिंह का रूप हो, चाहे राम का हो, चाहे वराह का हो, चाहे कृष्ण का हो, ये जीवों के पर कृपा करने के लिए। अब जप मत कीजिए, जप करने का ही मतलब होता है सुनना, और कथा सुनने का मतलब भी सुनना होता है। मैं आपसे कह रहा हूं पुरुषोत्तम के बगल में, तो एक साथ में दोनों काम नहीं होगा। नापरा जानते हैं ना, भी इनअटेंटिव, इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए। तो भगवान जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान जीवों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। ये भगवान की अनुग्रह है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार के अनुग्रह है भगवान का। जैसे कोई आदमी धन चाहता है, वह भगवान के पास जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, यदि धन की प्राप्ति होती है तो समझता है कि भगवान का हम पर अनुग्रह हो गया, बड़ा कृपा हो गया, धन का प्राप्ति हो गया। किसी को संतान चाहिए, संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक कर्मी लोग, वैसे ही ज्ञानी लोग, और वैसे भक्त लोग। और भक्त पर अनुग्रह करने के लिए भगवान क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं, जैसा उनका रूप उसके अनुसार वे लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये ऐसी लीलाएं हैं जिसको सुनने पर व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके और भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुनना जरूरी है। तो भगवान का अनुग्रह है, विभिन्न प्रकार का ये रूप धारण करना कि भगवान का अनुग्रह है। शरणागतों पर उनका रक्षा करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। मायावादी लोग कितना भी चिल्लाते रह जाएं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, मर जाएंगे चिल्लाते चिल्लाते, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान रूप धारण करेंगे। भगवान की इच्छा, भगवान यदि कोई भगवान की इच्छा को बदल सकता है तो वह है भक्त। भक्तों के बस भगवान होते हैं, और कोई नहीं बदल सकता है। तो भगवान इच्छा से आते हैं, और नाना तनो भुवि चलचरणारविंदम, भगवान चलते हैं। ये दूसरा बात प्रमाणित करता है कि जो मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, उन लोगों को यह श्लोक खंडित करता है। यहां पर जीव खंडित करता है कि भगवान विभिन्न प्रकार का रूप तनु यानी शरीर धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार का तनु शरीर धारण करते हैं, लेकिन शरीर धारण करने के बाद भी उनमें और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है भगवान। विभिन्न प्रकार का देह धारण करने के बावजूद भी उनमें और उनके देह में कोई भेद नहीं है। एक बार जुहू मॉर्निंग वॉक के समय डॉक्टर पटेल और प्रभुपाद जी से बात हो रही थी, और प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे थे कि भगवान शरीर धारण करते हैं लेकिन उनमें और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है, जहां कि हम में और हमारे शरीर में भेद है। डॉक्टर पत्रेन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और प्रभुपाद जी बार बार कह रहे थे कि भगवान अपने इच्छा से शरीर धारण करते हैं, जहां कि हम लोग परवश हैं, हम लोग पर थोपा गया है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए तो बात होते होते, हां बात शुरू हुआ था यहां से कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया था गुजरात में, जब बहलिया ने मारा था उस समय उन्होंने शरीर त्याग दिया था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सशरीर गए थे, तो यहीं पर बात शुरू हुआ कि शरीर धारण करते हैं त्यागते हैं तो हमारे उनमें अंतर क्या है। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिए कि मान लीजिए कि भगवान ने एक शरीर धारण किया तो बड़ा बात क्या है। यदि कोई टेलर है, दर्जी है, वो सबके लिए कमीज बना रहा है, एक कमीज अपने लिए बना लिया तो उसमें गड़बड़ क्या हो गया? एक कमीज अपने लिए बना लिया, बड़ा बात क्या है। तो भगवान सबके लिए शरीर बना सकते, अपने लिए बना क्या तकलीफ है? यदि आप जैसे समझ रहे हो उसके अनुसार भी तो भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान स्वयं शरीर धारण करते हैं, इसलिए उनमें और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। तो ए सकारवादी हुए स्वीकार, लेकिन निर्विशेषवादी जो कहते हैं, मायावादी जो कहते हैं, वो सीधे कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ये बड़ा इंसल्टिंग पॉइंट हुआ। यदि भगवान हम सबके पिता हैं और कोई कहे कि तुम्हारे बाप का आंख नहीं है, यानी तुम्हारा बाप अंधा है, कैसा लगेगा आपको सुनने में? अच्छा लगेगा? वो गाली दे रहा है ना, तुम अंधे के बेटे हो। कोई कहे कि तुम्हारे बाप का पैर नहीं है और लंगड़ा है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम्हारे बाप का हाथ नहीं है, तो एक तरह से हम लोग मारने दौड़ेंगे बदमाश कहीं का, तुम्हारे बाप गाली दे रहा है तो अंधा का बेटा है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में ऐसे ही शुरू शुरू में लेक्चर देते थे और इसी बात कहते थे कि दीज मायावाद इज दे आर किलिंग आवर कृष्णा, दे आर किलिंग कृष्णा। तो अभी यहां पर अपने गर्ग मुनि प्रभु होंगे, पूछिएगा उनसे बताएंगे। तो प्रभुपाद जी के कुछ पुराने उन दिनों के शिष्य थे, जब ये बात सुनते थे तो वे लोग समझे कि इंडिया में कोई मायावादी नाम का कोई आदमी है और जो स्वामी जी को भगवान को मारता है, मारने का प्रयास करता है, और स्वामी जी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। तो उन लोगों ने प्लानिंग किया कि इंडिया में आ करके और उस मायावादी को खत्म कर देंगे। ये अमेरिकन लोग थे ना, अभी शुरू शुरू का मोमेंट 1966 का बात था। तो उसके बाद आप देखेंगे 67-68 के बाद में प्रभुपाद जी मायावादी बहुत कम कहे, इम्पर्सनलिस्ट कहना शुरू कर दिए। तो ये मायावादी लोग बड़े खतरनाक हैं वास्तव में। सही प्रभुपाद जी करते, कृष्ण को मार रहे हैं, दे वांट टू किल कृष्ण, इंसल्ट कर रहे हैं। हाउ कैन वी टोल्ड इट, कैसे हम कह सकते? हम अपने बाप के विषय में कोई इस प्रकार से बात कहे नहीं सह सकते। इसलिए कि ये लोग भगवान को समझते नहीं है। जब यहां पर चल तत्चरणारविंद, चलते हैं, चलने का मतलब पैर है, बिना पैर कैसे चल सकते हैं? हां ये बात है कि हम लोग एक अंग से एक काम कर सकते हैं, जहां कि भगवान एक अंग से समस्त अंगों का कार्य कर सकते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानिजस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। एक अंग से समस्त अंगों का काम कर सकते हैं। अंगानिजस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रिय के वृत्ति को भगवान कर सकते हैं। ये हैं भगवान, ये हैं भगवान। तो भगवान यहां पर चलते हैं, कहते हैं नाना तनो, विभिन्न प्रकार का भगवान शरीर धारण करते हैं और यहां पर अपने चरणों से चलते हैं भगवान। क्यों? भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उन शरणागतों पर अनुग्रह करने के लिए। जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान उसके प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्पापे भो मोक्षयिष्यामि माश्च। हम लोग यहां पर LIC का बुकिंग करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। भगवान इंश्योरेंस दे चुके हैं, अब कोई LIC करने की जरूरत नहीं है। एक ही LIC है और वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह पॉलिसी आप लोग खरीद लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा। एक ही पॉलिसी खरीद लीजिए, यही है LIC, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो हम लोगों का स्पिरिचुअल नाम इसका क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कॉन्सेंसेंस। हाँ अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस निकाल लीजिए हरे कृष्ण जप करने कर करके। भगवान रक्षा करते हैं जो उनके शरण में जाता है पूर्णतया। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक समय विभीषण जी प्रायः आया करते थे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या। एक समय वे अयोध्या से दर्शन कर करके जा रहे थे और अभी अभी अयोध्या से निकले थे, तो भगवान का वे चिंतन कर रहे थे। रथ चल रहा था, उन्हें पता भी नहीं कि रथ कैसे चल रहा है, क्योंकि भगवान के चिंतन में इतने मग्न थे कि भगवान का वे दर्शन किए, भगवान का उनके साथ में कैसा व्यवहार रहा, सोचते सोचते जा रहे थे। और उतने में ही रथ UP पार करके बिहार में आ गया, जो बहुत खतरनाक जगह है। वहां पर एक गांव है, जिस गांव में केवल ब्राह्मण ही रहते हैं। आज भी वो गांव है, बक्सर के बगल में, केवल ब्राह्मण रहते हैं। अब किसी प्रकार से रथ के नीचे एक ब्राह्मण आ गए और उनका देहांत हो गया। आप में से कितने लोग बिहार से हैं, थोड़ा हाथ रहता मैं जान लूं कम से कम। पहले मैं उठाऊं, हम बिहारी जी के हैं, रास बिहारी के। तो एक बिहार का यह है कि किसका गलती हो बाद में देखते हैं लोग, पहले जो गाड़ी से मारा है, ट्रक होगा तो उसको जला देंगे, ड्राइवर होगा तो मारकर उसमें डाल देंगे, सब खत्म कर देंगे। अन्य जगह पर कम से कम पता लगाते हैं भाई किसका गलती है, देखा जाए, लेकिन वहां पर नहीं। तो ये लोग विभीषण जी को पकड़ लिए, रथ को तो नहीं जलाए, विभीषण जी को पकड़ लिए और पकड़ कर लेकर गए और खूब मारने लगे, खूब मारे, जी भर मारे। सब लोग गांव के एक एक आकर के मारते गए। विभीषण मरिए नहीं रहे, सब परेशान हो गए, क्या है ये, कौन अन्न खाया है, क्या खाया है, मर नहीं रहा है, बड़े परेशान हो गए सब लोग। और जितना मार रहे थे भगवान राम का स्मरण कर रहे थे। तो भगवान राम आए, जब आए तो ब्राह्मण लोग राम भगवान राम की कृति को सुने थे, भगवान राम को प्रणाम किए और भगवान राम से वार्ता करने लगे। भगवान राम ने कहा सब कुछ ठीक है ना, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले लोग चिट्ठी लिखते थे पुष्कार्ड पर, तो आपको मालूम है कि सब कुछ ठीक है घर में, लेकिन इनका देहांत हो गया है। जब सबको ठीक है तो देहांत हो गया, कैसे हो गया। तो एक गांव का कहने का तरीका है, कहते हाँ प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति देखने में तो राजा जैसा है, रथ पर चढ़कर आ रहा है, इतना निर्दयी कि गेक गांव के ब्राह्मण का हत्या कर दिया उसने, और सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है कि उसको हम लोग मारने का खूब प्रयास किए लेकिन मरिए नहीं रहा। तो भगवान राम ने कहा अच्छा अभी जीवित है? कहा कि हाँ जीवित है। कहां पर है? तो बताया तो काल कोठरी में रखे हम लोग, खाना पीना बंद कर दिया, शायद वैसे मर जाएगा। तो भगवान राम को लेकर के वहां पर गए ब्राह्मण लोग, सब पूरा गांव आ गया। भगवान राम के सामने उस ब्राह्मण को लाया गया और विभीषण जी जब अपने प्रभु को देखे सष्टांग दंडवत प्रणाम किए, उनका हाथ पर बिल्कुल बांधा गया था। भगवान ने कहा छोड़ दीजिए आप लोग, छोड़ दीजिए, आप लोग यदि मारना चाहते हैं तो आप लोग हमको मारिए, क्योंकि विभीषण मेरे सेवक है। यदि सेवक कुछ अपराध करता है तो सेवक का गलती नहीं होता है, मालिक का गलती होता है। तो विभीषण मेरे सेवक हैं, आपको मारना है तो आप हमें मारिए, इनको मत मारिए। जहां तक मरने का सवाल है, इनको मैं तो अमरत्व का वरदान दे चुका हूं, तो मरने का सवाल भी नहीं उठता है, इसलिए आप लोग छोड़ दीजिए। बाद में ब्राह्मण लोग समझ गए कि हम लोगों से बहुत गलती हुई और क्षमा याचना किए। मगर भगवान शरणागत वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों का जो उनके शरण में आ जाते हैं सर्वतोभावी रक्षा करते हैं। इस उदाहरण से दिखाई देता है कि विभीषण जी सर्व प्रकार से भगवान के शरण में थे और भगवान सब प्रकार से उनका रक्षा करते थे। तो जो लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं भगवान रक्षा करते हैं, विभिन्न प्रकार से रक्षा करते हैं। कभी भक्तों को भेज कर रक्षा करते हैं, कभी गीता इत्यादि उपदेशों के द्वारा रक्षा करते हैं, और कभी पर्सनली रक्षा करते हैं, कभी लीला करके रक्षा करते हैं। चल चरणारविंदम, भगवान चल कर करके, ब्रज का लीला देखिए। भगवान राम को मालूम नहीं था कि रावण सीता जी का चोरी किया है, मालूम था सब कुछ, लेकिन लीला पर भगवान वनवन में भटक रहे थे, सीता जी के विषय में पूछ रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर नैनी, पूछ रहे थे वृक्षों से, लता पताओं से, पशुओं से, क्या तुम लोगों ने मृगनैनी सीता कहीं देखा है? एक सामान्य पुरुष के समान भगवान शिव और पार्वती जी जा रहे थे, सती जी, सती जी भी किमकर्तव्य विमूढ़ हो चुकी, क्या रे ये क्या हो रहा है? वहां पर भगवान शिव भगवान राम को प्रणाम किए। सती जी ने कहा आपने किसको प्रणाम किया? तो ने कहा हम अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। कहा किस राम को? दशरथ नंदन राम को, कि जो पत्नी के लिए यहां भटक रहे हैं उन राम को, कि जो सबके हृदय में परमात्मा के रहे में उन राम को। सती जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया, लेकिन भगवान शिव तो महाजन है, वे जानते थे। वे कहे तीनों एक ही हैं, आप लोग इस लीला कथा को सुने होंगे। तो भगवान एक सामान्य पुरुष के समान, समान व्यक्ति के समान, जो चार त्रुटियों से भरा पड़ा हो वैसा व्यवहार करते हैं, चलते हैं। भगवान कृष्ण का लीला देखिए, चलते हैं भगवान, चल चरणारविंदम, क्यों? रक्षा करने के लिए। उपसन्नम अवितुम, जो उनके शरण में आ गया है उन शरणागतों का रक्षा करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर करके चल चरणारविंद, बड़ा सुंदर शब्द है, चल चरण, भगवान चलते हैं, लीला करते रहते हैं भगवान। कार्तिक का समय है, ये लीला का समय है, लीला बहुत हुआ था कार्तिक में, आप लोग सुने हैं। एक मैं भी सोच रहा था कि लीला कह दूं भगवान के चलने का। एक बार जब भगवान कृष्ण छोटे थे, ब्रज की परिपाटी थी, गांव की ऐसी परिपाटी थी, है भी आज भी, कि गांव का जो छोरा होता है वो किसी घर का छोरा नहीं, पूरे गांव का छोरा होता है। यदि गांव का किसी का बेटा कुछ गलती करता है तो दूसरा व्यक्ति झापड़ मार देगा सुधारने के लिए, बाप मां कहेंगे अच्छा किया सुधार दिया उसको। आजकल कोई झापड़ मारे तो पुलिस के पास जाएंगे। अमेरिका में तो बाप भी अपने बेटे को झापड़ नहीं मार सकता है, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। पहले गांव के लोग झापड़ मार सकते थे क्योंकि पूरे गांव का बच्चा होता है। तो कृष्ण तो गांव के नाते भी गांव के बेटे थे और भगवान थे, बड़े प्रिय थे सब लोगों के। कृष्ण हैं, सबको अट्रैक्ट करते थे, सब लोग उनसे मोहित थे, सब लोग मोहित थे और सब चाहते थे कृष्ण हमारे घर आए माखन खाने के लिए, सब लोग चाहते थे। तो एक गोपी दही लेकर के जा रही थी और ये सजाई दही था, ऊपर से उसका मलाई ऊपर रखा था दही के ऊपर। कृष्ण ने कहा कि हमको तुम दही दो, तो कृष्ण तो उस गोपी ने कहा देखो तुम्हें दही खाना है तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें दही खिलाऊंगी, यहां दही नहीं दूंगी। तो कहा तुम दही नहीं दोगे तुमको मुझको? कृष्ण एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, नहीं गोपी दी। भगवान उठाए एक पत्थर दे मारे, मटकी टूट गया, सब दही पूरे शरीर पर आ गया और कृष्ण चले भाग वहां से। और भाग करके आ करके यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैया मैं बड़ा परेशान हूं आजकल। तो मैया ने कहा लाला क्या हुआ, क्या परेशानी है? कहा मैया एक गोपी है जो हमारे पीछे लगी रहती है, वो बाघिन के समान देखने में है, मुझे उससे बड़ा डर लगता है, वो हमारे पीछे पीछे लगी रहती है, हमको बड़ी परेशान करती है, मैं उसी के डर से भाग करके अभी आ रहा हूं। तब तक से गोपी आ गई यशोदा रानी कंप्लेन करने के लिए। तो कृष्ण कहा देखो मैया यही है, यही यही बाघिन है, हमारे पीछे पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ बहाना बना करके आ जाती है, देखो आ गई है अभी। अब गोपी ने सब बात बताया कि कृष्ण ने कैसे पहले तो मक्खन मांगा, नहीं दिया तो मटकी तोड़ दी। कृष्ण वहां पर बैठे हुए थे आंख बंद कर करके, बिल्कुल मानो उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तब मैया ने कहा कि लाला ये गोपी क्या कर रही है, बात सही है? कहा मैया चुप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक से यहां पर रहेगी, तो जल्दी भगाओ मैं सब बात बताऊंगा, इससे मुझे बड़ा डर लगता है, इसको पहले जाने दो बात बताऊंगा। यशोदा ने कहा कि लाला चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बताओ बात क्या है। तो कृष्ण थोड़ा ऐसे हाथ करके मैया को बताने लगे, कहे कि मैया आप तो जानती हैं कि मैं पूरे ब्रज का ठीका ले चुका हूं, आरोग्य विभाग का मैं अध्यक्ष हूं, कोई बीमार ना हो ब्रज में, ये मेरा देखभाल करना काम है, कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार ना हो, ये अपना उसका अध्यक्ष मैं हूं। देखो एक गोपी, बात यही है कि यह गोपी पांच दिन का सड़ा हुआ दही लेकर जा रही थी बेचने के लिए। मैया आप ही सोचो कि अब दही पांच दिन का सड़ा हुआ कोई खाएगा तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं तो ब्रजवासियों का रक्षा करने के लिए इसका मटकी तोड़ दिया। तो भगवान जब ऐसा कह लिए, नहीं जब गोपी उलाहना दे रही थी भगवान ऐसा कह लिए, तो गोपी ने कहा कि देखो बहन क्षमा करना, मेरा लाला गलती कर दिया, कोई बात नहीं तुम्हें मैं 10 मटकी दे रही हूं, नया मटकी दे रही हूं। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया, पकड़े मैया क्या कर रही हो, एक गलती कर रही है, मैं इसका मटकी तोड़ा, अब इसको 10 मटकी दे रही हो। तब मैया ने कहा कि लाला देखो मैं इसको 10 मटकी ब्राइब किया दे करके इसका मुंह चुप रखने के लिए, नहीं तो जा करके पूरे ब्रज में कहेगी कि कृष्ण बदमाश है, मटकी तोड़ता है, दही चोरता है, चोरी करता है, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, तब कोई व्यक्ति अपना छोरी तुमको नहीं देगा शादी करने के लिए, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तब क्या होगा? तो कृष्ण कहा तब तो ठीक किया मैया, एक और दे देना चाहिए था आपको, 11 देना चाहिए था। तो कृष्ण इस प्रकार से लीला करते थे। ब्रज में बहुत लीला कृष्ण किए। ये किसके लिए किए? हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए किए। परीक्षित महाराज 7 दिन बिना खाए पिए हरि कथा सुनते रहे। ये लीला प्रद कथाएं जो हैं भगवान ने किया हम लोगों के उद्धार के लिए है, तो हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं, चलते रहते हैं। अब जीव कह रहा है उन्हीं प्रभु के जो शरणागत वत्सल भगवान हैं, उनके ही सो अहम ब्रजामि, सो अहम है, स अहम मैं उन्हीं भगवान के, अहम ब्रजामि शरणम, मैं उनके शरण में जा रहा। किसका हारमोनियम बजने लगा? उनके शरण में जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? ही अकुतो भजम में, यह संसार पवर्ग संसार है, प फ ब भ और म, भ मतलब भय। इस संसार में भय ही भय है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक चिड़िया को आप चारा डाल दो, चना डाल दो या चावल डाल दो, वो चिड़िया खाएगी, देखती रहेगी है? संसार में भय है। भय किसे कहते हैं? अदृश्यम भय कारणम, भय का कारण है अदृश्य, अनजान, जिसको हम जानते नहीं है। और सबसे अनजान वस्तु जो है वह है मृत्यु। सबको मृत्यु से भय है, कोई मरना नहीं चाहता है, वह अनजान है, अनजान वस्तु है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके लिए मृत्यु अनजान नहीं होती है। वह उसके लिए तो सिंपल चीज है, जियो वा मरो वा, भाई तुम्हारे ऊपर है, जीना है जीनो, मरना है तो मरो, उसके लिए फ्री हैंड है, है? उसके लिए जीवन और मरण दोनों एक समान है, क्योंकि मृत्यु के सत्य को जानता है। दुख की बात है कि संसार में लोग मृत्यु को जानते ही नहीं है। क्षण क्षण में हम मर रहे हैं लेकिन फिर भी मृत्यु को हम जानते नहीं, न तो हम जानना चाहते हैं और न तो मृत्यु के विषय में सुनना चाहते हैं। जो सुनने योग्य वस्तु है, एक बार कहीं मैं कथा कह रहा था और मृत्यु का बात कह रहा था, तो एक माता जी कहती स्वामी जी अरे कुछ और बताइए, मरने का बात क्यों कहते जा रहे हैं? मैं कहा कि यही असली बात है, आप मरने वाली नहीं हो, सब मरने वाले हैं, ये सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज तो यही बात पूछे कि मरने वालों को क्या करना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। मरने के बाद लोग कहते हैं सबको जाना है, वो चले गए हम भी जाने वाले हैं। अरे भैया जाने वाले हो, कहां जाने वाले पता तो लगाओ, वहां का टिकट खरीदे हो कि नहीं, जहां जा रहे हो वहां क्या लेकर के जाओगे, सब कुछ पता लगा कर रखो तब ना। कुछ लोग कहते हैं हमारे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, बात सही कहते हैं, मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है कि बैकुंठ वास हो जाए। जन्मला अभाव परापुंसा अंत नारायण स्मृति, प्रभुपाद जी भी यहां पर कहते हैं, भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि जो उसके पास चला जाता है वह इस संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं लौटता। बैक होम, बैक टू गार्डन। तो मानव जीवन इसके लिए मिला हुआ है, वैकुंठ वास करने के लिए। ये सब बातें सत्य है। स्वर्गवास हो गया, वैकुंठ वास हो गया, पेपर पर लिखवा दो, पेपर में पब्लिश करा, मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, लिखने से वैकुंठ वास नहीं होता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए भक्ति करना पड़ता है, जो भगवान हम लोगों को दिए हैं यहां कर कर। तो संसार में जो व्यक्ति भय से परे हो जाता है, ही ही मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभय होना चाहता है, जो अभयता को प्राप्त करना चाहता है, जो भय से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे उन भगवान के शरण में जाना चाहिए जो शरणागत वत्सल पर कृपा करने के लिए विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर करके आकर के विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं, यानी कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। एक ऐसी विडंबना है कि हम सब लोग जानते हैं कि सुखी नहीं हो सकते हैं इस संसार में। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुखी हूं इस संसार में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो ही व्यक्ति संसार में सुखी हैं, एक है परमहंस और दूसरा है पागल। अब डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है। दोनों पागले हैं, एक पागल है कृष्ण के विरह में और दूसरा पागल है पता नहीं किस विरह में, उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, पढ़ा हूं अभी तक। तो संसार के लोग पागल हैं संसारिक सुख के लिए जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है। कौन सुखी हुआ है? एक बार मैं कथा कर रहा था, जयपुर के बगल में एक जगह है माधवपुर, तो प्राय कथा के बाद मैं प्रश्न उत्तर लेता हूं, और कथा में मैं कहा था कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं। तो एक आदमी टाटा नगर से था, कहा कि नहीं मैं सुखी हूं। वो थोड़ा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, कहा मैं सुखी हूं। मैं कहा अच्छा आप सुखी हैं? कहा कि हां। मैं कहा आप सत्य बोल रहे हो? कहा बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मैं कहा आपका उम्र क्या होगा? कहा 60 साल होगा। कहा सही बोल रहे हो ना? कहा बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो मैं कहा कि ये आपका बाल ओरिजिनल है कि नकली है? तो कहा कि इसका मतलब क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं ओरिजिनल है कि नकली है, मतलब एक काला दिखाई पड़ा है, मेरा तो उजला हो गया है, अभी आपसे छोटा हूं तो अभी उजला हो गया है, आपका काला दिखाई पूरा पड़ रहा है, तो ये बाल ओरिजिनल है कि? कह के नहीं मैं डाई किया हूं। सत्य बोला, वो झूठ नहीं बोला, बोला मैं डाई किया हूं। मैं कहा आपने डाई क्यों किया? उजला में क्या तकलीफ था? आपने क्यों डाई किया? क्योंकि उजला में आप सुखी नहीं थे, दुखी थे, इसलिए आपने डाई कर दिया। क्या तकलीफ था उजला बाल में? वो अच्छा नहीं लग रहा था, डाई किया, दुखी थे। तो इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। यदि कोई सुखी होना चाहता है, भय मुक्त होना चाहता है, तो उसे जाना चाहिए भगवान के शरण में। श्रील प्रभुपाद जी की कितनी अच्छी कृपा है कि भगवान के शरण में भेजने के लिए कितना सरल तरीका प्रभुपाद जी दिए हैं। चार नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, साधना भक्ति करना, हरि कथा सुनना, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। हम लोग कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन कठिन कार्य करने के बाद भी सुखी नहीं होते हैं। और सिंपल कार्य मेजा में जाता ही नहीं है। सिंपल चीज है, भगवान का नाम लो, भगवान का कथा सुनो, भगवान का प्रसाद खाओ, इसे सुखी रहोगे। लेकिन इन्हीं लोग करना चाहते हैं। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हो जो यहां पर वृंदावन धाम में आए हो, भगवान कथा सुन रहे हो। अब जीव एक बात आगे कह रहा है, क्योंकि घड़ी का चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो अकुतो भयम, जो व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहे, भजा हूं रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणार बिंदरे, नंद नंदन का भजन करना चाहिए जो अभयता को प्राप्त करना चाहता है। जीव आगे कह रहा है, इन्ने दृशि गति अदर्शी असत अनुरूपा। हे भगवान, ये जो गति मेरी है आपने ही किया है। ये बड़ा फिलोसफिकल बात है। संसारिक लोग प्राय यही कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से होता है, भगवान सब करते हैं, बात भगवान करते हैं, लेकिन हम हाफ सत्य कहते हैं, पूर्ण सत्य नहीं कहते हैं। कहते हैं भगवान कराते हैं, भगवान कराते हैं, भगवान नहीं कराते हैं। भगवान तो केवल संगसन करते हैं। कैसे? यहां कहते हैं असतो अनुरूपा, हमारे अपवित्र कार्यों के चलते हमको ये देह मिला है जो जो दुख का कारण है। ये देह जो है दुख का कारण है, सुख का कारण देह नहीं है। भगवान जब जीव को कर्म के अनुसार दुख देना चाहते हैं जो उनको भूल जाता है, तो भगवान देह दे देकर दुख देते हैं, चाहे मनुष्य का देह हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बंदर का हो। कृष्ण भूली से ही जीव भोगवांछा नहीं अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसारे दुख। इस संसार में दुख देती है माया देह दे दे करके, क्योंकि देह से ही हम सुख और दुख दोनों भोग सकते हैं, बिना देह के नहीं भोग सकते हैं। तो भगवान निरपेक्ष हैं, भगवान निर्लिप्त हैं, भगवान एक जज के समान है। जज जजमेंट सुनाता है व्यक्ति के कर्म के अनुसार, किसी को फांसी का सजा देता है और किसी को उन्मुक्त करता है, रिवार्ड करता है, किसी को पनिश करता है, उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो तो होता है व्यक्ति के कर्म के अनुसार। तो जीव यहां पर रियलाइज कर रहा है कि मैं आज ये दुख भोग रहा हूं, दुख आपने दिया है, जजमेंट आपने दिया है, लेकिन मेरे कर्मों के अनुसार। ठीक वैसे ही मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कोई यहां से दिल्ली एयरपोर्ट जाने का इच्छा करे, चाहे रेलवे स्टेशन, दूर रहा रेलवे स्टेशन जाने के लिए, टैक्सी में आप बैठो और स्टेशन पहुंच जाओ तो टैक्सी वाला पैसा मांगेगा। आप नहीं कह सरे तूने हमको वहां से यहां लेकर के आया, मैं पैसा क्यों दूं? वो कहेगा सर आपने इच्छा किया था, आपने कहा था हमको यहां पर लाने के लिए, इसलिए मैं लाया हूं। तो इच्छा हम करते हैं और भगवान उसको संक्षम करते हैं। अनुमंता, भगवान अनुमंता है, अनुमति देने वाले, संक्षमिंग अथॉरिटी भगवान है। तो यहां पर दोनों पक्ष रखा गया है कि आपके अनुमति से, आपके संक्षम से मैं देह ग्रहण कर करके दुख भोग रहा हूं, लेकिन हे प्रभु इसमें आपका गलती नहीं है, गलती किसका है? मेरा गति है। अदर्शी असत अनुरूपा, गति अदर्शी असत अनुरूपा, जो मेरी एक गति हो रही है, जो मैं दुख भोग रहा हूं, इसका कारण आप नहीं हैं, कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैंने असत कार्य किया है। और असत कार्य क्या है? इंद्रियों को तृप्त करने की भावना, और सत कार्य है भगवान का भजन। सत हरि भजन असत सब सपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही एक मां सत्य वस्तु है। जो असत के पीछे पड़ेगा हमेशा दुखी रहेगा। सबसे खराब चीज है असत का शरण ग्रहण करना। प्रहलाद जी यही कहते हैं, तस्साधु मन्ने असुर भज देहि नाम सदा समुद्रे असत ग्रहाय हित्वात पातम यदा हित्वात पातम गृहंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर गृहस्थी को छोड़ो, वृंदावन में आकर रहो, या नहीं यही वृंदावन नहीं है ना कि जैसे बहुत भीड़ हो जाता है, पूरा संसार वृंदावन है जहां पर कृष्ण का भजन हो रहा है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय पिच, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते मैं वहां रहता हूं, जो भगवान है वहां वृंदावन है। इसका मतलब है ना कि वृंदावन नहीं है, वृंदावन ही है। तो भजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई कहीं पर रह करके। तो मोटा मोटी से श्लोक का सारांश यही है कि जीव ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हे प्रभु तीन बातें यहां पर है कि आप शरणागत वत्सल हैं, आप उन शरणागतों के लिए आप विभिन्न प्रकार का, नाना प्रकार का देह ग्रहण करते हैं और विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, लीला करते हैं उन लोगों के आनंद के लिए। मैं भी वैसा ही एक पतित जीव हूं, मैं आपके शरण में आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत दुख है, भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपके शरण में आ रहा हूं। संसार में जो भी दुख मुझे प्राप्त हो रहा है आपकी ही कृपा से हो रहा है, लेकिन मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे असत कर्मों के द्वारा मुझे दुख मिल रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।